سورة الأعراف آیت نمبر 163 سے 166 163 سے 166 یہاں پر جو ہے وہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. اس واقعے کا ذکر اب سورۃ البقرہ آیت نمبر 65-66 65-66 میں بھی پڑھ چکے ہیں, اور اب یہاں پر مزید اس کی جو ہے وہ تفصیل بیان ہوئی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ وَسْأَلْهُمْ ان سے سوال کرو, پوچھ ان سے. تو سالہ کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا. اب آپ دیکھیں کہ پوچھ ان سے, کن سے پوچھ, ہم کی ضمیر یہودیوں کی طرف آئی ہے کہ یہ یہودی, یہ بنی اسرائیل کے لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کا لاڈلا کہتے ہیں, اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا بنائے بیٹھے ہیں, ذرا ان سے اس قریے کے بارے میں پوچھو. وہ بستی جس نے سب کی بے حرمتی کی تھی اور اس کی سزا میں اللہ نے اس بستی کو نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا. بڑا زبردست انداز ہے وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ, ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو. قریہ جو ہے یہ اس سے مراد جو ہے وہ بستی ہے. کون سی بستی؟ اللَّتِ كَانَتْ حَادِرَةَ الْبَحْرِ, جو سمندر کے کنارے واقع تھی. اور محققین کا غالب میلان ہے کہ یہ مقام ایلا یا ایلات تھا, اور یہ جو بستی تھی یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ اس کے قریب واقع ہے. تو یہ بستی سمندر کے کنارے پہ رہتی تھی. اس یعدون فی السبتی, یعدون عین دال واو سے ہے, جب وہ بڑے حد سے, جب انہوں نے خلاف ورزی کی, فی السبتی ہفتے کے دن کی. اذ یعدون فی السبتی, جب انہوں نے ہفتے کے دن کے متعلق اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی. اذ تاتیہم حیتانہم, جب آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں ان کی. حیتان جو ہے اس کا روٹ ہے ہا وو تے, یہ اسم جنس ہے, اس کی جمع حیتان ہے, اور بڑی مچھلی کو کہتے ہیں حوت, بڑی مچھلی کو کہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ نون, حضرت یونس علیہ السلام کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے کہ ایک جگہ آیا ذنون, ذنون اذ ذہبا مغادبا, کہ وہ مچھلی والا جب جو ہے وہ ناراض ہو کر چلا تھا. اور حضرت یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت بھی کہا گیا ہے. حوت جو ہے یہ مچھلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور جب مچھلیاں جو تھی وہ آتی تھی ان کے پاس, یوم سبتہم ہفتے کے دن, شرعن کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے, اس کا روٹ ہے شین را عین, شارعت ان کی جمع ہے. یہ لفظ نیزوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے, اس سے مراد ہے سیدھے اٹھائے ہوئے نیزے. جب یہ لفظ مچھلیوں کے لیے آتا ہے تو اس سے مراد ہے منہ اٹھائے ہوئے مچھلیاں, پلی بھی مچھلیوں کے تالاب کے کنارے, ان کے ابھرنے کے اوقات میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مچھلیاں اپنے جب سر جو ہے وہ سطح پر جو ہے وہ نکالتی ہیں تو ان کے ابھرے ہوئے سر اس طرح سے نظر آتے ہیں گویا وہ اپنے نیزے سیدھے کیے ہوئے ہوں, کیونکہ سمندروں کے کنارے جو ہیں وہاں پہ لوگ شکار کرتے ہیں, اور یہ منظر جو ہے وہ بڑا ہی دل فریب ہوتا ہے جو اس وقت جو ہے وہ نظر آتا ہے. यहाँ पर जो है फिर शुरा अन के क्या मानी है, जैसे ये लफ्ज शरीयत के लिए भी इस्तेमाल होता है ना, शरीयत किसे कहते हैं, दीन को, तो शुरा अन के मानी है जाहिर, शरीयत जो है वो जाहिरी तरीका है, बिल्कुल नुमाया है, तो किसी चीज का खींच कर या बुलंद होकर जाहिर होना उसको शुरान कहते हैं, शुरान उभर उभर कर। तो शुरान वो पानी के ऊपर आती थी उभर उभर कर, व यौमा और जिस दिन, ला यस बेतूना हफ्ता नहीं होता था, व यौमा ला यस बेतूना और जिस दिन हफ्ता नहीं होता था, ला ताते ही वो नहीं आती थी, कजालिका इसी तरह, नबलूहुम आजमाते थे हम उनको, बिमा कानु यफसुकून उनकी नाफरमानियों की वजह से, तो इसलिए होता था कि हम उनकी नाफरमानियों की वजह से उनको आजमाइश में डाल रहे थे। सब जो है ये हफ्ते के दिन को कहते हैं, इसके लफ्जी मानी है काटना। तो हफ्ते के दिन बनी इसराइल जो थे वो काम को काट देते थे, काम नहीं करते थे, और ये दिन बनी इसराइल के लिए मुकद्दस दिन था। अल्लाह ताला ने उसे अपने और औलादे इसराइल के लिए पुश्त दर पुश्त जो है वो दायमी अहद का निशान करार दिया था, और उन्हें ताकीद की थी कि इस दिन कोई दुनिया का काम नहीं करेंगे, नंबर दो घरों में आग तक नहीं जलाई जाएगी, नंबर तीन जानवरों और लौंडी गुलामों तक से कोई खिदमत नहीं लेंगे, और अगर कोई शख्स इस कानून के खिलाफ वर्जी करेगा तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तो बनी इसराइल के लोगों ने इस दिन की मुखालफत करनी शुरू कर दी, इस दिन की नाफरमानी करनी शुरू कर दी, अलल एलान अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी करनी शुरू की। तो यहाँ पर जो है इसी वाक्य की तरफ जो है वो इशारा किया गया है कि बनी इसराइल जो है इनमें एक ग्रोह जो था वो बस्ती के किनारे, वो बस्ती थी समंदर के किनारे पर वाकया थी, और वो क्या करती थी कि हफ्ते के दिन जो है वो मछलियां पकड़ती थी, हालांकि हफ्ते के दिन उनके लिए मछलियां पकड़ना जो था वो मना कर दिया गया था, उनके लिए जायज नहीं था, वो उनके लिए खास तौर पे इबादत का दिन था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप समझ लें जुमे के दिन मुसलमानों के लिए क्या है कि वो अपनी तिजारत को छोड़कर जो है वो जुमे की नमाज की तरफ आए, तो इनके लिए भी ये था कि ये कोई जो है वो जाती काम नहीं कर सकते, कोई जॉब नहीं कर सकते, कोई मछलियां नहीं पकड़ सकते थे, क्योंकि वो जो बस्ती समंदर के किनारे रहती थी उसका जरिया माश जो था वो क्या था, मछलियां पकड़ना था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो मछलियां पकड़नी शुरू कर दी, उन्होंने खिलाफ वर्जी की से क्या मुराद है, इस यादू नफिस सप्ती, जब वो हफ्ते के दिन खिलाफ वर्जी कर रहे थे, किस चीज की खिलाफ वर्जी कर रहे थे कि जब उन्हें कहा गया था कि मछलियां नहीं पकड़नी तो उन्होंने जो है वो हफ्ते के दिन मछलियां पकड़नी शुरू कर दी। और आम दिनों में मछलियां जो है वो समंदर के किनारे पर या समंदर की सतह पर उभर उभर कर नहीं आती थी, लेकिन उस दिन जो है वो मछलियां जो थी वो समंदर पर तैरने लगती थी, खूब मछलियां आती थी, और दूसरे दिनों में मछलियां गायब हो जाती थी, और ये थी उन पर अल्लाह की तरफ से आजमाइश। अब उन्होंने ऐसा तरीका इख्तियार किया कि हफ्ते के दिन मछलियां पानी की तरफ वापस ना जा सकें, ताकि इतवार के दिन वो उनका शिकार कर लें, और उन्होंने जो है वो कुछ छोटे छोटे खड्ड से भी बना दिए, वहां पे मछलियां आ जाती थी, जब हफ्ते की शाम गुजरती थी तो फिर वो मछलियां जो थे वो पकड़ लेते थे। तो ये क्या था, कजालिक इसी तरह ये उनके लिए आजमाइश थी, नबलूहुम कि हम उनको आजमाएं, बालाम वो जो है इसका मतलब है आजमाना, बीमा का अनुयफ सुकून उनकी उन नाफरमानियों की वजह से जो के वो कर रहे थे। तो ये जो अल्लाह ताला बंदों की आजमाइश करता है तो क्यों करता है अल्लाह ताला आजमाइश, अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि इस बंदे के अंदर कितनी मेरी अतात पाई जाती है, कितना ये नाफरमानी की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसे मौके सामने आते हैं जिस वक्त जो है वो इस बात का अल्लाह रब्बुल इज्जत इम्तहान लेना चाहते हैं कि इस बंदे के अंदर जो है वो मेरी अतात कितनी पाई जाती है और मेरी नाफरमानी जो है वो कितनी पाई जाती है। और जो वाकयात होते हैं उसमें वो बंदे की बंदा जो है वो खुलकर सामने आ जाता है कि कौन है जो अपने आप को अल्लाह की बंदगी के लिए मुखलिस कर लेता है और कौन है जो कि वो नाफरमानी करता है। वह इस कालत उम्मतुन, और इन्हें याद दिलाओ, वह इज और याद दिलाओ, याद करो, कालत कहा उम्मतुन एक ग्रोह ने, तो उस बस्ती वाले जो थे ना उनमें तीन ग्रोह बन गए थे, तो उनमें से एक ग्रोह ने, मिनहुम उनमें से एक ग्रोह ने कहा लिमा तअज़ून कौमा मिल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। अब ये कि जब वो लोग मछलियां पकड़ रहे थे तो लोग तीन ग्रोहों में बट गए, एक ग्रोह था मछलियां पकड़ने वाला, दूसरा ग्रोह जो था जो उन मछलियां पकड़ने वालों को रोक रहा था, और तीसरा ग्रोह जो था वो ना तो मछलियां पकड़ रहा था और ना ही पकड़ने वालों को रोक रहा था। अच्छा, अब जो है एक ग्रोह जब मछलियां पकड़ रहा था तो दूसरा ग्रोह जो है उन्हें मछलियां पकड़ने से मना कर रहा था, तो जो मना करने वाला ग्रोह था उसको तीसरे ग्रोह ने कहा लिमा तअज़ूना कि तुम क्यों वाज करते हो, तुम क्यों जो है वो नसीहत करते हो, वो ऐन जोए जो है इसका मतलब होता है नसीहत करना, तुम क्यों नसीहत करते हो कौमन एक ऐसी कौम को अल्लाहु के अल्लाह मोहले को हम उन्हें हिला करने वाला है, तो हम की जमीर जो है जो मछलियां पकड़ने वाले हैं उनके बारे में आई है कि अल्लाह उनको हिला करने वाला है, और मुअज्जिब हम या उन्हें अजाब देने वाला है, अजाबन शदीदन सख्त अजाब। तो अब आप देख लें कि अब ये जो ग्रोह था मछलियां पकड़ने वालों को जो रोक रहा था, तो दूसरा ग्रोह उनसे कहता है कि रहने दो इनको, ये गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह इनको जो है ना हिलाक करने वाला है, सख्त इनको अजाब देने वाला है, या इनको हिलाक कर देगा या सख्त सजा देगा, तो मना करने की क्या जरूरत है। अब जो मना करने वाले थे कालू वो बोले माजिरतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तकून, माजिरतन ऐन ज़ाल रा उजर, ऐसी कोशिश जिससे इंसान अपने गुनाहों को मिटा देना चाहे, माजरत पेश करे। तो उन्होंने कहा कि हम ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जो है वो माजरत के लिए ऐसा कर रहे हैं, इला रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास, तो ये जो हम इन्हें मना कर रहे हैं ताकि जब अल्लाह हमसे पूछेगा कि ये मछलियां पकड़ रहे थे तो तुमने इनको मना क्यों नहीं किया था, तो उस वक्त जो है हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जो है वो माजरत कर सकेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उन्हें उस वक्त जो है ये बता सकेंगे कि हमने तो इनको नसीहत की थी, हमने तो इन्हें समझाया था, हमने जो है इनको जो है बताया था कि ये अल्लाह की नाफरमानी है, वलअल्लहुम यत्तकून और शायद के वो डर जाए, शायद के ये डर कर जो है ये मछलियां पकड़ना जो है वो छोड़ दें। फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू, फिर जब उन्होंने जो है वो भुला दिया, जब वो भूल गए, मा ज़ुकिरू वो जो उनको नसीहत की गई थी, यही साथ इसके, तो जब उन्हें समझाया जाता रहा और उन्होंने ना माना, अंजैना लजीना यनहौना अनिसुई, अंजैना, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हमने निजात दे दी, अल्लजीना उन लोगों को, यनहौना अनिसुई जो मना करते थे बुराई से, तो अल्लाह ने उन लोगों को बचा लिया जो इन्हें मछलियां पकड़ने से रोकते थे, जो इन्हें बुराई से रोकते थे, वह अखजना और हमने पकड़ लिया, अल्लादीना उन सब लोगों को, जलमू जिन्होंने नाफरमानी की थी, जिन्होंने जुल्म किया था, जो जालिम थे, किसने पकड़ा, बे अजाबिन बईसिन, सख्त अजाब में। तो बईस जो है बा से आप पहले ही पढ़ चुकी हैं, बा हमजा सीन, जिसके मानी होते हैं सख्ती के शिद्दत के, तो सिर्फ वो लोग जो थे वो बचे जो मना कर रहे थे और बाकी सारे लोग जो थे उन्हें जो है वो हमने सख्त अजाब में जो है वो पकड़ लिया, बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़सुकून, उनकी उन नाफरमानियों की वजह से उनको पकड़ा जो वो कर रहे थे। फलम्मा अतौ अम्मा नहू अन्हू, फिर जब वो पूरी सरकशी के साथ वही नाफरमानी करते चले गए जिनसे रोका गया था, फलम्मा अतौ ऐन तावौ, इसके मानी होते हैं सरकशी करना, बस जब वो सरकशी करते रहे तो वो मछलियां पकड़ते रहे। अम्मा नहुआ नू जिनसे उन्हें रोका गया था, कुलना तो हमने कहा लहुम उनको, कुनु किरदतन खासेन कि तुम सब बंदर हो जाओ, खासेन जलील और ख्वार, तुम सब जो है वो जलील जो है वो बंदर बन जाओ। मुफस्सरीन कहते हैं कि वो जो लोग थे उस बस्ती के बनी इसराइल के, वो तीन ग्रोहों में तकसीम हो गए, एक धड़ल्ले से मछलियां पकड़ने वाले, दूसरे मछलियां तो नहीं पकड़ रहे थे लेकिन तमाशबीन बनकर खामोशी से बैठे उनको देख रहे थे, और नसीहत करने वालों से कहते थे कि इन कमबख्तों को नसीहत करने का क्या फायदा। तीसरा ग्रोह वो था जिनकी गैरत ईमानी जो थी वो अल्लाह की इस नाफरमानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और वो लोग क्या कर रहे थे कि नेकी का हुक्म दे रहे थे, बदी से मना कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि हम अपनी हद तक फर्ज अदा करके रहेंगे ताकि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने बरात पेश कर सके। और जब अल्लाह का इस बस्ती पर अजाब आया तो तीनों ग्रोहों में से ये तीसरा ग्रोह बचाया गया जिन्हें अल्लाह के हुजूर अपनी माजरत पेश करने की फिक्र थी, और ये वही ग्रोह था जिसने अपनी बरात का सबूत जो था वो फराहम कर रखा था, और बाकी दोनों ग्रोह जो थे ये जालिमों में शामिल हो गए। मुफस्सरीन कहते हैं कि इस बस्ती पर जो है वो दो तरह का अजाब आया। पहला क्या था, ये अजाबिन बेईसिन, ये सख्त अजाब था जो इस बस्ती पर आया, और दूसरा अजाब क्या था, कुनु किरदतन खासेन, कि इनसे कह दिया गया कि जलीलो ख्वार जो है वो बंदर बन जाओ। तो अब यहां पर जो है इन पर जो अजाब आया इसकी तफसील क्या है, मुफस्सरीन ये कहते हैं, बाज कहते हैं कि उनको हिलाक कर दिया गया, बाज ये कहते हैं कि उन्हें जो है वो बंदर बना दिया गया, और बंदर भी कैसे, यानी उनकी सूरतों को मस्ख कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी की थी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी सूरतें ही जो है वो बदल कर रख दी, कुनू किरदतन खासेन, और उन्हें जो है वो बंदर बना कर रख दिया। तो इस वाके से अमल का ये उसूल हमारे सामने आता है कि नेकी का हुक्म देना चाहिए और बदी से मना करना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स तुम में से कोई बुराई देखे तो उसे चाहिए कि अपने हाथ से उसे बदल दे कुव्वत से, और अगर ऐसा ना कर सके तो जबान से रोके, ये भी ना कर सके तो दिल में ही बुरा समझे, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। आप अपना जरूर जायजा लिया करें, किसी महफिल में गीबत हो रही है, किसी महफिल में नाच गाना डांस हो रहा है, कहीं कोई किसी पर ज्यादती कर रहा है, और उस मौके पर आप अपने आप को ईमान के किस दर्जे पे पाती हैं? ईमान के तीन दर्जे हैं, या तो आप उसको कुव्वत से रोक दें, या आप उसको जबान से कहें कि भाई ये गलत है, ये ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और या फिर ये कि आप अपने दिल से उसको बुरा जाने, लेकिन ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है और ये बड़ा ही खतरनाक दर्जा है, क्योंकि जब सिर्फ दिल से बुरा जानते हैं तो पता नहीं होता कि कब जो है वो दिल से वो कराहत भी खत्म हो जाती है और आप भी करने वालों में शामिल हो जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना है कि जब लोग जालिम को जुल्म करते देखें और इसका हाथ ना पकड़े तो करीब है कि अल्लाह की तरफ से इन पर अजाब नाजिल हो। इसे जो है वो तिर्मिजी ने रवायत किया है। फिर आपने वो मशहूर जो हदीस है बुखारी की, एक दिन मैंने आपको सुनाई थी पहले भी, कि जो है वो हजरत नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं कि अल्लाह की हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वालों और खिलाफ वर्जी देकर खामोश रहने वालों की मिसाल ऐसी है जैसे उन लोगों की जिन्होंने किसी जहाज में बैठने के लिए कुरा अंदाजी की, कुछ लोगों के हिस्से में निचली मंजिल आई और दूसरे लोगों के हिस्से में ऊपर वाली मंजिल। अब निचली मंजिल वाले जब पानी लेकर बलाई मंजिल यानी ऊपर वालों के पास से गुजरते तो उन्हें तकलीफ होती, ये देखकर निचली मंजिल वालों में से एक ने कुल्हाड़ी ली और जहाज के पेंदे में सुराख करने लगे, भलाई यानी ऊपर वाले हिस्से वाले लोग उसके पास आए और कहा तुम्हें क्या हो गया। इसने जवाब दिया तुम्हें हमारी वजह से तकलीफ पहुंची और हमारा पानी के बगैर गुजारा नहीं। अब अगर ऊपर वालों ने इसका हाथ पकड़ लिया तो उसे भी बचा लिया और खुद भी बच गए, और अगर उसे छोड़ दिया तो उसे भी हिला किया और अपने आप को भी हिला कर लिया। तो इससे क्या बात पता चलती है कि नेकी का हुक्म देना है, बदी से मना करना है। हक ने की है दोरी दोरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, हक ने की है दोरी दोरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है। खुद सरापा नूर बन जाने से कब चलता है काम, तुझको इस जुल्मत कदे में नूर फैलाना भी है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम अल्लाह की पकड़ से बच जाएं, तो हमें जो है अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाना है। और नंबर दो, जो अतो कर रहे हैं, अतो जो अल्लाह की नाफरमानी में हद से तजावुज कर रहे हैं, फलम्मा अतो अम्मा नहु अनहु, तो फिर उन्हें जो है वो रोकना है। क्यों? वरना जो करता है गुनाह और जो होते हुए देखता है और रोकता नहीं है, तो दोनों पर जो है वो अजाब आता है। हदीस में भी है ना कि जैसे जो है जब एक बस्ती में जो है वो दो लोग नेक थे, और जब जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा और अजाब के फरिश्तों को, तो कहा कि उस बस्ती को जो है वो तबाह बर्बाद कर दो। तो फरिश्तों ने कहा कि वहां तेरे अल्लाह, अल्लाह तेरे दो बंदे हैं जो दिन रात तेरी इबादत करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि बल्कि बस्ती को उनके ऊपर उलट दो, कि वो खुद तो इबादत करते थे लेकिन जो लोग गुनाह करते थे, नाफरमानी करते थे, तो इनके जो माथे पे शिकन तक नहीं पड़ती थी, वो उनको रोकते नहीं थे। बल्कि एक हदीस में इस तरह के अल्फाज मिलते हैं कि सजा की इब्तदा उन्हीं लोगों से करो। तो इसलिए जरूरी है कि जो बात खुद को पता है उसे आगे आगे जो है वो फैलाया जाए, उसे बताया जाए, ताकि अल्लाह की नाफरमानी से जो है वो बचा जा सके। तो आप देख लीजिए कि बनी इसराइल की नाफरमानी की ये तीसरी मिसाल है, उनकी अखलाकी और दीनी पस्ती की तीसरी मिसाल है। आपने पिछले सबक में भी जो है वो एक मिसाल पढ़ी थी, और वो क्या थी कि दरवाजे के अंदर जो दाखिल होने का तरीका था, उन्होंने हिंतातुन कहना शुरू कर दिया, हित्तातुन को। फिर इसके अलावा और जो था वो क्या करते थे कि ये बनी इसराइल के जो लोग थे, कि मूसा अलैहिस्सलाम जब गए थे जो है वो कोहे तूर पर, तो इन्होंने जो है वो बछड़े को माबूद बना लिया था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया था कि हमारे लिए भी एक बुत बना दीजिए। तो इस तरह इनकी जो है वो तारीख जो है वो अल्लाह की नाफरमानी की तारीख है। अब ये ना सोचें कि उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कह रहे हैं और हम जो है हम बहुत अच्छे हैं, बल्कि गौर करें कि आज मुसलमानों के अंदर, मेरे अंदर क्या जो है वो ऐसी नाफरमानी के जरासीम पैदा हो गए जिनको अल्लाह नापसंद करता है। फिर आप देखिए कि मजीद फरमाया, वा इत अज़ना रब्बुका लयबअसन अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमहुम सू अल अज़ाबी इन रब्बका लसरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफूरुर रहीम। वा इत अज़ना, तअज़ना जो है इसके मानी है फैसला कतई से लोगों को आगाह करना। तअज़्ज़न का लफ्ज जो है ये खबरदार करना, नोटिस देना, इस मानी में जो है वो इस्तेमाल होता है। वइज़ तअज़्ज़ना, और जब तेरे रब ने नोटिस दे दिया था, तेरे रब ने ऐलान कर दिया था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या नोटिस दिया था, लयब असन्ना अलैहिम, कि वो बनी इसराइल पर मुकर्रर करता रहेगा, वो बनी इसराइल पर मुसल्लत करता रहेगा, जरूर भेजेगा। बासा यबसु का मतलब होता है भेजना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके ऊपर जरूर भेजेगा, इला यौमिल क़यामती, क़यामत तक। कौन भेजेगा, कैसे लोगों को भेजेगा, मैं यसूमहुम, ऐसे लोगों को जो दिया करेंगे इनको, यसूमहुम जो मुब्तिला रखेंगे इनको, सू अल अज़ाबी बुरे अजाब में। तो वो मौका भी याद करो जब तुम्हारे रब ने ये ऐलान किया था कि वो कयामत के दिन तक इन पर ऐसे लोग मुसल्लत करता रहेगा जो इन्हें बदतरीन अजाब देते रहेंगे, جیسے کبھی یونانی بادشاہوں نے انہیں غلام بنایا، کبھی بخت نصر نے ان پر جو ہے وہ مظالم ڈھائے، مجوسیوں نے ان پر ظلم کیا اور مسلمان حکمران بھی ان پر مسلط ہوئے، پھر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہٹلر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، اور 20ویں صدی کے وسط میں چند حکومتوں کی مدد سے جیسے امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے تھوڑے سے علاقے میں جو اسرائیل کا علاقہ ہے یہاں پہ یہودیوں کی حکومت قائم ہے، مگر وہاں پہ بھی امن نصیب نہیں ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ ان کو بدترین عذاب میں مبتلا رکھے گا، ان ربک لسریع العقاب، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں جو ہے وہ تیز دست ہے۔ سریع سین را عین جلد باز ہے، العقاب پکڑ میں، سزا دینے میں۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو جو اللہ کی طرف لوٹ آئے، جو اللہ کی طرف رجوع کر لے، جو توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں، تو اللہ ان کو ذلت کے عذاب سے جو ہے وہ بچا لے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب یہاں پر ایک اور عذاب کا ذکر ہے، اور وہ کیا کہ یہودیوں کے مختلف گروہ بن گئے، یہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کر امتوں میں تقسیم کر دیا، اُمَمًا گروہوں میں تقسیم کر دیا، امت واحد ہے، اُمَمًا جمع ہے۔ تو جب ان کے بہت سے ٹکڑے ہو گئے، یہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے، منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے جو تھے وہ مختلف تھے۔ تو کچھ جو تھے وہ اچھے تھے اور کچھ جو تھے وہ نافرمان تھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں ڈالا شاید کہ یہ پلٹ آئیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ، اب یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ با لام و بلو جو ہے اس کے معنی ہے آزمائش۔ تو انسان کی فرما برداری اور سرکشی کا امتحان جو ہے لینے کے لیے اللہ طریقہ استعمال کرتا ہے، ان کو امتحانوں میں ڈال دیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے بھی کہ یہ کتنے فرما بردار ہیں، اور یہ دیکھنے کے لیے بھی کہ یہ کتنے سرکش ہیں۔ تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور آزمائشوں میں ڈالنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، شاید کہ یہ اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ آئے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو ہے وہ کیا کیا کہ تربیت اور اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ ہے جو نہ چھوڑا ہو، ہر طریقے کو آزمایا، کبھی اچھے دن ان پر آئے جیسے صحت دولت مال، اور کبھی برے دن آئے کہ بیماری فقر اور جو ہے وہ غربت۔ اور مقصد کیا تھا کہ شاید اس طرح یہ گناہوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ جو جب اچھے دن آتے ہیں تو بھی رغبت ہوتی ہے، جب برے دن آتے ہیں تو بھی جو ہے وہ انسان کے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 168 میں جس سزا کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کیا، فرقہ بندی کا عذاب ان پر مسلط کر دیا۔ آیت 169 سورۃ الاعراف، فخلف من بعدہم خلف، فخلف پھر خلیفہ بنے، من بعدہم ان کے بعد، خلف، خلف جو ہے لام پر سکون کے ساتھ جو ہے یہ برے جانشین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے برے جانشین آئے، ورثوا الکتابا، ورثوا جو وارث بنے کتاب کے، ان کا حال کیا تھا کہ تورات کے وہ وارث تھے لیکن عمل کیسا تھا؟ یا خزون عرض حاض الادنا، یا خزون وہ لیتے تھے، عرض عرض جو ہے یہ چوڑائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ فائدے لیتے تھے، یعنی دنیا کے فائدے سمیٹتے تھے، چڑائی سے مراد دنیا کے فائدے۔ حاضل ادنا، ادنا جو ہے ये लफ्ज जो है ये इस्तेमाल हुआ है दाल नून वो से, इसका रूट दाल नून वो है और इसके मानी है जैसे करीबी के, अकरब के, अदना अकरब के मानी में है। इसका मुअन्नस है दुनिया, आखरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी इंसान के बहुत करीब है, इसीलिए दुनिया को अदना भी कहा जाता है कि आखरत के मुकाबले में करीब है, आखरत के मुकाबले में हकीर है। तो जलीलो ख्वार के मानी भी हो सकते हैं और आखरत के मुकाबले में करीब के मानी भी। तो यहूदियों के अंदर जो दो तरह के लोग थे, एक तो अल्लाह के नाफरमान थे और जैसे जो है अस्सालेहून, तो वो कैसे थे, वो शरीयत के पाबंद भी थे, वरिसुल किताब, और दूसरे जो थे वो नाफरमान थे, वो तौरात के वारिस तो बने लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो किताबे इलाही के वारिस होकर दुनिया के फायदे समेटने लगे। उन्होंने अपनी किताब को सौदागरी बना दिया, उसे दुनिया के फायदों के लिए बेचने लगे, रिश्वत लेने लगे, अल्लाह के कलाम में तब्दीली करने लगे। वह यकूलूना, और वो ये कहते थे युग फरू लना, के अनकरीब हमें माफ कर दिया जाएगा। वहीं या तिहिम अरदुन, और अगर फिर इनके सामने जो है वो दुनिया का कोई फायदा आ जाता। अरदुन, अरद का लफ्ज जो है ये चुड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है और सामान को भी कहते हैं जो नकद के बदले खरीदा जाता है। तो मानी क्या है, दुनिया का जितना भी माल है वो सारा नापायदार है। तो जब कभी दुनिया का माल उनके सामने आता, मिस्ल हू उसी जैसा, या खुजू, तो वो उसको जो है वो पकड़ लेते, उसको ले लेते। अब यहां पर जो है वो डांट डपट का अंदाज है कि अलम यूखज अलैहि मीसाकुल किताबी, क्या इनसे जो है किताब का अहद नहीं लिया जा चुका था। अल्लाह यकूल वल्लाहि इल्ल हक्का वदरसु मा फीही, कि अल्लाह के नाम पर वही बात कहें जो हक हो और ये खुद पढ़ चुके हैं कि किताब में क्या लिखा था। अब यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि इन्होंने कैसे अल्लाह के कलाम को, अल्लाह की किताब को जो है वो वारिस बनने के बाद दुनिया का माल समेटने पर वो बेचने लगे, और साथ साथ वो ये कहते थे कि हमें माफ कर दिया जाएगा। बड़े बेबाक थे, कहते थे हम तो अल्लाह के चहेते हैं, जो चाहे करें, हमें माफ किया जाएगा। अब यहां पर जो है पूछा जा रहा है, क्या इनसे किताब में ये अहद नहीं लिया गया था कि वो हक के सिवा अल्लाह से कुछ मंसूब नहीं करेंगे। कहीं अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि जो कुछ चाहे करें उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा। वदरसू माफी ही, और वो पढ़ते भी रहे माफी ही जो इस किताब में मौजूद था। तो जो कुछ किताब के अंदर था उसको पढ़ते भी रहे, तो सारा पढ़ा लिखा जो है वो बर्बाद हो गया। तो वो अच्छी तरह पढ़ चुके थे, उन्होंने क्या पढ़ा था कि वो जो है वो अल्लाह की अतात करेंगे और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो गलत बातें करने लगे। वद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून अफला ताकिलून, बड़ी खूबसूरत बात है और जो है ये निचोड़ है सूरत अल आराफ का, और एक मुसलमान जो है उसकी जिंदगी में ये चीज जो है ये मगज की हैसियत रखती है कि आखरत का घर जो है खैरुन, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है। लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, यत्तकून जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो मुत्तकी बन जाते हैं, खुदा तर्स है। तो तकवा इख्तियार करने का मतलब क्या है, क्योंकि खुद ही कहा जा रहा है अफला ताकिलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। आगे तकवा की तफसील बताई जा रही है। नंबर एक, वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताबी, जो अल्लाह की किताब को जो है वो मजबूती से थाम ले। मीम सीन काफ जो है इसका रूट है, और जो चीज मौजूद हो उसको मजबूती से पकड़ लेना और उसकी हिफाजत करना। तो तकवा किसे कहते हैं, जो लोग किताब को मजबूत पकड़ लेते हैं। इसके मानी क्या है कि जो अल्लाह की किताब है वो उस पर अमल करते हैं, उसको उसकी हिफाजत करते हैं। नंबर दो, वाकामुस सलाता, और वो नमाज को कायम करते हैं। یعنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. اِنَّا لَا نُدِيعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کیا کرتے. اب آپ دیکھ لیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں. تو مسلمانوں میں متقی کون ہوں گے؟ جو قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے اور نماز قائم کریں گے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ایسے نیک لوگوں کا اجر جو ہے میں ضائع نہیں کیا کرتا. اجر المصلحین، مصلحین صلح سے ہے، کہ ان کا اجر جو ہے ہم کبھی ضائع نہیں کریں گے. اب آیت نمبر 171 میں، 171 میں جو ہے وہ ایک اور واقعے کا ذکر ہے، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لے کر آئے اور ان کو تورات کے جب احکامات سنائے تو انہوں نے حسب عادت تورات پر عمل کرنے سے انکار کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کر دیا کہ اگر تم عمل نہیں کرو گے تو اس پہاڑ کو گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا. تو انہوں نے ڈرتے ہوئے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، فرمایا اور وہ واقعہ بھی یاد کرو. نتقنا، جب ہم نے اٹھایا تھا. نتقا اس کا روٹ ہے، نون تا قاف، اس کا مطلب ہے ہم نے اٹھایا، ہم نے اکھیڑ دیا، کسی چیز کو کھینچ کر بلند کر دینا، اس کو کہتے ہیں نتق. جب ہم نے جو ہے وہ اوپر کیا تھا، ہم نے اٹھایا تھا، کھینچا تھا. سورۃ البقرہ میں آپ نے اس کے لیے رفعنا کا لفظ پڑھا ہے، رفعنا. تو ہم نے پہاڑ کو ہلا کر اس طرح ان کے اوپر کر دیا تھا، فوقہم، ان کے اوپر کر دیا تھا. کأنہم ذلۃن، گویا کہ وہ ایک چھتری ہے. ذوئے لام لام، یہ لفظ جو ہے یہ سائے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو ایسے تھا پہاڑ ان کے اوپر جیسے کہ یہ ایک چھتری کی طرح، ایک سائبان کی شکل میں ان کے اوپر نمایاں ہو گیا تھا، معلق ہو گیا تھا. وظنوا، اور وہ گمان کر بیٹھے تھے، انہ واقع بہم، کہ وہ پہاڑ ان پر گر پڑے گا. واقع، وہ ان پر گرنے ہی والا ہے. تو پھر کیا کیا؟ ان سے کہا کہ خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں. تو جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں، مراد کیا ہے؟ کتاب. بے قواتین، اسے مضبوطی سے تھامو. وذکرو، اور یاد کرو. ما فیہ، جو اس کے اندر ہے. لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم جو ہے وہ غلط روی سے بچ سکو گے. آپ دیکھ لیجئے کہ خود ہی ان کی خواہش کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کتاب مانگی، اللہ رب العزت سے جو ہے وہ شریعت کی فرمائش کی. 40 دنوں کا انہوں نے جو ہے وہ اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ہے وہ کتاب ملی. اور اس کے بعد جو ہے، کیونکہ ان کے لیے تورات پر عمل کرنا ان کی طبیعت کے خلاف تھا، تو اللہ رب العزت نے جو ہے پھر جبریل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا جائے. اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کن اکھیوں کے ساتھ، ایک طرف وہ اوپر پہاڑ کو دیکھتے تھے کہ ان پر گر نہ جائے، دوسری طرف وہ آگے ہاتھ کو بڑھاتے تھے کہ کتاب جو ہے اس کو پکڑ لیں. تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے جو ہے انہیں جو ہے، جب انہیں اپنی موت سامنے نظر آنے لگی، موت کھڑی بھی نظر آنے لگی، وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا جو ہے وہ وعدہ کر لیا. وعدہ کرتے تھے پھر خلاف ورزی کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے پھر خلاف ورزی کرتے تھے. اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی تاریخ کیوں سنا رہے ہیں؟ تاکہ امت مسلمہ غور و فکر کر کے اپنا رویہ، اپنا عمل جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرح نہ کر لے. لعلکم تتقون، شاید کہ تم جو ہے وہ متقی بن جاؤ. اب اس کے بعد جو ہے، اب یہاں پہ جو ہے ایک اور واقعے کا ذکر ہے، اور یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت سے اور ان کی اولاد سے جو ہے یہ وعدہ لیا تھا. اور آیت نمبر 171 پر آ کر جو ہے یہ بنی اسرائیل کا واقعہ جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، اور ان کے واقعات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد عام انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ سورۃ الاعراف کا اختتام ہے. اور فرمایا جا رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو وہ واقعہ بھی یاد دلاؤ جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا. وَإِذْ أَخَذَا, اور جب ان سے لیا تھا ربو کا تمہارے رب نے, کن سے؟ من بنی آدم, آدم علیہ السلام کی اولاد سے, من ظہورہم, جب ان کی جو ہے وہ پیٹھوں سے, ذریتہم, ان کی نسل کو نکالا تھا, وَأَشْهَدَهُمْ, اور ان کو گواہ بنایا تھا, عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, ان کے اوپر, اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ, انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں, شہیدنا, ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے وہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی آدم کی پشتوں سے جب ان کی اولاد کو نکالا تو انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا, اور اس وقت اللہ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں, ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. تو ساری روحوں کو جو قیامت تک جو ہے وہ پیدا ہونے والی ہیں, پیدا ہونے والی تھی, اللہ رب العزت نے ان کو جمع کیا, اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم میری بندگی کرو گے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں. پھر فرمایا ان تقولو, کہیں تم یہ کہنے لگو, کہیں تم یہ نہ کہنے لگو, یوم القیامتی, قیامت کے دن, انا کنا عن ھذا غافلین, کہ ہم تو اس بات سے ہی بالکل بے خبر تھے. یہ جو گواہی اللہ نے لی تھی عالم ارواح میں, یہ اس لیے لی تھی تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تو ہم سے کس چیز کا حساب لیتا ہے, کیا تو نے ہم سے پوچھ کر ہمیں دنیا میں بھیجا تھا اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کیا کرنا تھا. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں ایک ایک سے فردن فردن یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تمہیں جو ہے وہ میری بندگی کرنی ہے, اور اس وقت جو ہے سب نے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ ہم تیری, ہم مانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے, اور ساری روحوں نے خدا کے بارے میں اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اے اللہ تو ہمارا جو ہے وہ رب ہے. تو یہ جو توحید ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے, اسی لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو دین ابراہیمی پر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے, پس شیطان ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیتا ہے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. تو دین فطرت ہے کیا؟ توحید کا دین. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے, اس کا ناک کان کٹا ہوا نہیں ہوتا. اسے بھی صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کی گواہی اس لیے لی تاکہ لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ ہمیں جو ہے کہ تو ہمارا رب ہے اور ہمیں تیری بندگی کرنی ہے. او تقولو, یا تم یہ کہنے لگو, انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم, کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے کی تھی. شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے کی تھی کب؟ من قبل, ہم سے بھی پہلے. وکنا ذریۃ من بعدہم, اور ہم باپ کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے. تو ہمارا کیا قصور؟ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے تو ہم بھی شرک کرنے لگے کیونکہ ہم بعد میں ان کی نسل سے جو ہے وہ پیدا ہوئے. افتہلکونا بما فعل المبطلون, تو پھر کیا آپ ہمیں اس قصور پر پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ اب یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تیری بندگی کرنی ہے. دوسری بات یہ शिर्क तो हमारे बाप दादा करते थे तो इसलिए हम भी शिर्क करने लगे। कहा ताकि तुम ये उजर भी पेश ना कर सको, और तुम ये ना कहो कि हमारे बाप दादा के कसूर पर ए अल्लाह तू हमें क्यों पकड़ता है। कहा व कजालिका, देखो इसी तरह, मुफस्सिलुल आयाती वलअल्लहुम यरजिऊन, हम जो है अपनी निशानियों को वाजे तौर पर पेश करते हैं शायद के लोग जो है वो इस तरफ पलट आए, शायद के लोग जो है वो अल्लाह की तरफ जो है वो रुजू कर लें। तो अब यहाँ पर जो है वो आलमे अरवाह में जो वादा लिया गया था वो याद दिलाया गया है, और ये बताया गया है कि अहदे अलस्त जो है इसकी हकीकत क्या है, कि हर हर कोई दीने इब्राहिमी पर दीने फितरत पर पैदा होता है, फिर बाद में लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि फिर वो शिर्क करने लगते हैं। तो उजर बहाना करने की बजाय फिर क्या करना चाहिए, अल्लाह की तरफ जो है वो रुजू करना चाहिए। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नंबर 175 में जो है एक वाकया बयान किया है, 175 से लेकर 177 तक क्या फरमाया, वतलू, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सामने बयान करो। वतलू जो है इसका रूट है तालाम वो, तालाम या, और इसके एक मानी होते हैं तिलावत करना और दूसरे मानी होते हैं अतात करना। तो कुरान मजीद की तिलावत की जाए, कुरान मजीद की जो है वो अतात की जाए। अब इस वाक्य में जो है वो क्या बताया जा रहा है कि बनी इसराइल के अंदर एक आदमी था और उसका नाम कुरान ने नहीं लिया। अल्लाह ताला की और अल्लाह के रसूल की इंतहाई अखलाकी बुलंदी है कि किसी की बुराई को मिसाल बनाते हुए, किसी की बुराई की मिसाल को पेश करते हुए बिलअमूम कुरान इसकी तस्री नहीं करता, उसकी शख्सियत की सिफात तो बताता है, उसका नाम सामने नहीं लाता। क्यों? ताकि इसकी रसवाई के बगैर असल मकसद हासिल किया जा सके। ना कुरान में इसका नाम पता चलता है, ना ही सही किसी हदीस में पता चलता है। कोई कहता है बलम बिन बाउरा था, बालम आइन मीम बलम, कोई कहता है उमैया बिन अबी सल था, कोई कहता है सैफी था स्वाद या फा, लेकिन हकीकत यह है कि इसका सही नाम जो है वो अल्लाह ही बेहतर जो है वो जानता है। तो ये एक शख्स था और इसका जो है बड़ा ही इबरतनाक वाकया है। बनी इसराइल में बड़ा आलिम था, इल्म मार्फत के आला मयार पर था, और फिर वो जो है वो गुमराह हो गया। फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत, वतलु अलैहिम नबा, और इनको सुनाइए, हाल बयान कीजिए इन पर एक अहम खबर का। नबा जो है बड़ी खबर को कहते हैं। अल्लाजी, एक शख्स, आतैनाहू आयातिना, कि जिसे हमने अपनी आयात का इल्म दिया था। तो पहली बात क्या पता चलती है कि ये एक बड़ी खबर है। नंबर दो, अल्लाजी आतैनाहू, कि जिसको हमने अता किया था आयातिना अपनी आयात, तो हमने उसे अपनी आयात का इल्म अता किया था, वो आलिम था, बड़ा आदमी था। नंबर दो, फनसलखा मिन्हा, फिर वो इसकी पाबंदी से भाग निकला। फनसलखा इसका रूट है सीन लाम खा, और इसके मानी होते हैं किसी जानदार की खाल खींच कर उतार देना, सांप की कुंचली उतारना। जैसे सांप होता है ना, उसके ऊपर जो है उसकी एक खाल होती है, फिर कुछ अरसे के बाद उसकी खाल जब पुरानी हो जाती है तो वो फिर उसकी उतर जाती है, फिर नई उसकी एक आ जाती है। तो इसलिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, सीन लाम खा, किसी चीज को में से निकल जाना, किसी में को छोड़ देना, किसी में से गुजर जाना, इंसलाख यानी किसी जानदार की खाल खींच कर उतार देना। फन सलाखा मिन्हा, कि वो जो इल्म था वो उसकी पाबंदी से इस तरह से निकला जैसे कि कोई जो है वो खाल में से बाहर आ जाए, बिल्कुल उसने वो जो इल्म था उसके खिलाफ जो है वो अमल किया। नंबर तीन, फअतबाहु शैतानु फकाना मिनल गावीन, फिर वो जो है उसने शैतान की पैरवी की, तो उसने क्या किया, वो शैतान के पीछे लग गया, फकाना मिनल गावीन, और वो भटकने वालों में शामिल हो गया। गावीन जो है यानी एक ही भटकने वाला नहीं है, बल्कि जो और बहुत से लोग भटकने वाले थे उन भटकने वालों की फहरिस्त में फिर वो भी शामिल हो गया, गावीन। तो ये है बर्बादी की इंतहा कि वो भी जो है वो गुमराह लोगों में, बुतों के पुजारियों में, वो भी जो अल्लाह के नाफरमान थे उनमें जो है वो शामिल हो गया। इससे क्या बात पता चलती है कि ये जो अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, अल्लाह का इल्म ऐसा है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, के इल्म रखने वाले ही अल्लाह से डरते हैं, और आलिम जो है कौन है, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं, और अंबिया की मिरास इल्म है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इल्म जो है ये गुमराही का सबब ही बन सकता है। फायदा कब देता है, जब इंसान इससे डरता है और किबर में मुब्तला नहीं होता। नुकसान ये इल्म कब देता है, जब इंसान जो है वो किबर में मुब्तला होता है और शैतान बन जाता है। जैसे शैतान भी अपने इल्म की वजह से और अपनी इबादत की वजह से वो फरिश्तों के साथ मिल गया था, लेकिन जब वो किबर में मुब्तला हुआ तो फिर वो जो है वो धुतकारे हुए लोगों में जो है वो शामिल हो गया। और कहते हैं कि ये जो शख्स था, ये बाज कहते हैं बलम था, बाज कहते हैं उमैया बिन सल था, कोई सैफी कहता है, ये शख्स जो था चूंकि बहुत आबिद था, जाहिद था, इसकी दुआएं बड़ी कबूल होती थी, बहुत बड़ा आलिम था। और जब जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लोग जो थे उन पर मुश्किल वक्त आया, तो उन पर जो है वो कुछ लोगों ने जैसे उनके इलाके पर कब्जा कर लिया हुआ था, तो उधर से जो है वो कौम जो थी, वो फिरौन के लोग तो समंदर में डूब कर मर चुके थे, तो इनकी कौम के लोग जो थे, जो बनी इसराइल के थे, वो जिस इलाके में उनको जाना था वहां पे जाबिर लोग रहते थे, तो बनी इसराइल के लोग इसके पास आए, जमा हुए और कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम सख्त आदमी हैं, इनके साथ बहुत से लश्कर हैं, और वो इसलिए आए हैं कि हमको हमारे मुल्क से निकाल दें, आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि इनको हमारे मुकाबले से वापस कर दें। और जो है वो कहते हैं कि इसको चूंकि इल्म ज्यादा था, बाज कहते हैं इसमें आजम इसको पता था। अब इसने कहा अफसोस है, तुम कैसी बात करते हो, वो अल्लाह के नबी हैं, मैं इनके साथ और इनके साथ अल्लाह के फरिश्ते हैं, मैं इनके खिलाफ बद्दुआ नहीं कर सकता, कैसे बद्दुआ कर सकता हूँ, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा जो है वो दीन दुनिया दोनों तबाह हो जाएंगे। लेकिन लोगों ने बेहद इसरार किया। फिर इसने जो है वो कहते हैं कि उस वक्त जो है वो क्या किया कि कौम की बातों में आ गया, उनसे रिश्वत कबूल कर ली, हदिया कबूल कर लिया, और फिर जो है वो उसने जो कौम के लोग कहते थे उसने वो बद्दुआ कर दी। और यहाँ पर जो है मुफस्सरीन कहते हैं कि इसी का जो है वो जिक्र है कि अल्लाह ने उसको इल्म अता किया था, आतेनाहु आयातिना फनसलखा मिन्हा, फिर अल्लाह के अता करदा इल्म से वो उसकी पाबंदी से निकल भागा, उसने शैतान की पैरवी कर ली, फकाना मिनल गावीन, और वो जो है वो नाफरमानों के जो ग्रोह है उसके अंदर जो है वो शामिल हो गया। तो इससे क्या बात पता चलती है कि बजाय इसके कि वो इल्म की बुनियाद पर अल्लाह से डरता और वो जो है वो ऐसे शैतान के पीछे लग गया और शैतान की उसने अताअत की कि अपनी अकल, अपना होश, सारा कुछ जो है वो खो बैठा। फिर फरमाया वलौशेना लरफअनाहु बिहा, अगर हम चाहते तो हम उसको बुलंदी अता करते, बिहा इन आयात के जरिए, वलकिन्नहु अखलदा इलल अर्दि, मगर वो तो जमीन ही की तरफ झुका रह गया। यहां पर जो है वो अखलदा का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और अखलदा जो है इसका मतलब होता है कि हो रहना, तो वो जो है बुलंदी की तरफ जाने की बजाय जो है वो माइल हुआ इलालर्दी जमीन की तरफ, उसने आयतों के जरिए दुनिया बनाना चाहे। वत्ता बा हवाहू, और उसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। फमसलहू कमसलिल कल्ब, पर उसकी मिसाल तो कुत्ते की तरह है। फमसलहू, लिहाजा मिसाल उसकी कमसलिल कल्ब जैसे कि कुत्ते की। इन तहमिल अलैही, इन तहमिल अगर तू लादे बोझ, हमल होता है ना बोझ उठाना, इन तहमिल अगर तू उस पर बोझ लादे, अलैही उस पर, यलहस तो वो जो है वो हम पे।